हालेलुया। कौन खुदा खुदा के हुजूर आज की सुबह खुश है? तो खुदावन की दी गई नेमतों बरकतों के लिए खुदावन के हुजूर जरा जोरदार तालियां दें। आए हम सब इससे पहले खुदा के जिंदा आवाज को सुने, हम खुदा के हुजूर झुकेंगे और खुदावन खुदा का कलाम अपनी रहनुमाई के लिए मांगेंगे। हम सब दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी रात की हिफाजत निगहबानी के लिए, तेरी दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए खुदावन, कि आज का कलाम हम सबके कदमों के लिए खुदा खुदा चिराग, राह के लिए रोशनी और खुदा खुदा रहनुमाई और ईमान की तरक्की का बायस बने। और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, और हम सब कम होते जाएं और तू बढ़ता जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं मेरे साथ, निकाले नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 17वां बाब। 17वें बाब में हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने शिगिर्दों से कि किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बनो, क्योंकि ठोकरें लाजमी लगेंगी। और कल हमने सीखा था कि ये ठोकरें क्या हो सकती हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लोगों को लग सकती हैं, हमारी वजह से किसी और को लग सकती है, जब हमारा चाल चलन, बैठना उठना और करदार किसी के लिए हौसला अफजाई या उसे तामीर करने या उसे तरक्की देने की बजाय क्या करता है जी, गुनाह का बाइस बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, ठोकर का बाइस। सो ये सारी गुफ्तगू चल रही है, खुदा यीशु मसीह ने कहा है ठोकरें लगेंगी अफसोस पर जिसके बाइस लगे, लेकिन क्या है जी, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारा गुनाह करे और तुमसे माफी मांगे तो तुम उसे माफ करो। जैसे कोई तुम्हें तुमसे माफी मांगता है, तुम्हें भी लाजमी है एक दूसरे से क्या किया जाए जी, माफी मांगना चाहिए, ताकि तुम एक दूसरे को बहाल कर सको। और हम सीखेंगे अगला हिस्सा ईमान के बारे में, ईमान के बारे में कि बाइबल मुकद्दस ईमान के बारे में हमें क्या सिखाती है। सो जब हम ईमान के बारे में पढ़ते हैं तो ईमान के तल्लक से बाइबल मुकद्दस हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए आए जरा इस हवाले को पढ़ें, लूका की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 5 और 6 आयत को। जब यीशु सारी गुफ्तगू कर चुका, उनको बता चुका गुनाह के बारे में, ठोकरों के बारे में और माफ करने के बारे में, तो उसके शिगिर्दों ने यूं कहा, इस पर रसूलों ने खुदावन से कहा हमारे ईमान को बढ़ाओ। खुदावन ने कहा कि तुम, खुदावन ने कहा कि अगर तुम में राही के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत से, तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। यहां पर जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह से उसके शिगिर्दों ने क्या पूछा है कि जी हमारे ईमान को बढ़ा। और जब यहां पर देखते हैं कि ईमान को बढ़ाने की बात हो रही है, तो बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि जो कुछ मांगोगे तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब हम खुदावन खुदा से कहते हैं कि खुदा हमें हिकमत और दनाई दे, तो उस दुआ का जवाब हमें खुदा किस तरह देगा, हमें फैसला करने के लिए क्या करेगा जी, तैयार करेगा। हमारे सामने खुदा ऐसा माहौल बनाएगा या उस माहौल को होने देगा कि हम उस माहौल में, उस हालात में क्या कर सके जी, फैसला कर सके, कि हिकमत की बात क्या है और बेवकूफी की बात क्या है। सो जब हम खुदा से कहते हैं कि खुदा खुदा हमें हिकमत और दनाई दे, तो हमारे सामने कोई ना कोई, किसी ना किसी का या हमारा अपना क्या आएगा जी, कोई ऐसा हालात पैदा होगा जिसमें खुदा हमारी जवाब दहाई करने के लिए कि तुमने उस दुआ को किया है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और हमें फैसला करना होता है कि अगर हम गलत फैसला करेंगे तो बेवकूफ़ी बनेगी, दुरुस्त फैसला करेंगे तो अकलमंदी बनेगी। यहाँ पर शिगिर्दों ने क्या कहा यीशु से, हमारा ईमान बढ़ा। और ईमान बढ़ाने के लिए यीशु मसीह ने उनको जो बात कही है वो क्या है जी, नामुमकिन है, क्योंकि नामुमकिन बात ही में क्या है जी, खुदावन खुदा ईमान को पैदा करता है। तो यहां पर शिगिर कहते हैं कि खुदावन खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। यीशु मसीह ने उनकी इस दरख्वास्त को सुना, उनकी इस ख्वाहिश को देखा कि वो चाहते हैं कि उसके रसूलों का, शिगिर्दों का क्या बढ़े जी, ईमान बढ़े, उसमें ज्यादा पुख्तगी आए और उसमें ज्यादा क्या हो जी, ईमान पैदा हो। और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और बाइबल मुकद्दस इब्रानियों के खत में क्या कहती है कि ईमान दरअसल है क्या, इब्रानियों 11 बाब जब उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, ईमान अमीन की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का क्या है जी, सबूत है। ईमान में हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ हम खुदावन खुदा पर भरोसा करते हैं खुदा उसे करेगा, ये ईमान का भेद है। क्योंकि ईमान रखते हुए हम शक नहीं रख सकते, अगर ईमान में शक रखेंगे तो वो ईमान काम नहीं करेगा, बेशक शक आएगा, बेशक हमारे दिल में ख्याल आएंगे कि क्या ये हो सकता है। क्योंकि यहां पर जब ये रसूलों ने कहा है खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो जानता था कि उनकी कैसी हालत है, शगीर्द खुद जानते थे कि यहां पर उनकी रूहानी कैसी हालत है, तो यीशु से कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राही के दाने के बराबर भी ईमान होता। यहां से पता चलता है कि यीशु मसीह उनको कह रहा है कि अगर तुम सिर्फ उस छोटे से छोटे बीज की मानद थोड़ा सा ईमान रखो तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम हो सकते हैं। और यहां पर ईमान की जो तफसील या थोड़ा सा बयान दिया गया है, बड़ा कठिन उसके सामने इम्तहान रखा गया है। ईमान रखना क्या है जी, सुनने वाले के कहे पर क्या कहना है जी, यकीन करना है। आपको याद है नमान कोड़ी को अलीशा नबी ने क्या कहा था, उसके कोड़ की बीमारी को जिसे पूरे इसराइल के हकीम, पूरे शाहे आराम के वो तमाम क्या है जी, बादशाह के हकीम, डॉक्टर, हर तरह की दवाइयां ठीक नहीं कर सकी। और यहां पर वो क्या है जी, इस कहानी में एक नबी के सामने खड़ा है और उसने क्या किया, अपने ईमान का आगाज किस बात से किया, जब छोटी लड़की ने कहा कि अगर तू मेरे मुल्क में जाए वहां पर एक नबी है तो वो तुझे क्या दे सकता है जी, शिफा दे सकता है। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसने किया है जी, ईमान उन अनदेखी चीजों के ऊपर यकीन और भरोसा और तवक्कल है जो अभी उसने नहीं देखी। और क्या करता है नमान कोड़ी, उस छोटी बच्ची की कही हुई बात पर यकीन करके बादशाह के पास जाता है। बादशाह पर वो बात ये जाहिर करता है, बादशाह इस बात पर यकीन करके उसको परवाना, उसको खत लेकर सोना चांदी रुपया पैसा दे देता है اور وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اور نمان کیا ہے جی؟ اپنی سفر کی طرف روانہ ہے اور آخر کو وہ الیشا کے گھر پر پہنچتا ہے اور وہاں پر وہ جا کر تفسیر دیتا ہے, انتظار کرتا ہے. اور انتظار میں کیا ہے جی؟ اس کا ایمان. ہم دیکھتے ہیں کہ شک کا کیڑا اسے لگتا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ یہ نبی میرے استقبال کو باہر نکل کر آئے گا, مجھ سے آ کر ملے گا. لیکن نبی کیا کرتا ہے؟ اس کے ایمان کو جو خدا جانتا ہے کہ کس طرح راستے میں آتے آتے شک کے کیڑے نے اسے کھانا شروع کیا, اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے خدا نبی کو پہلے ہی سے آگاہ کر چکا ہے. اسی وجہ سے الیشا باہر نہیں آیا. الیشا نبی اپنے اندر بیٹھا ہوا اپنے اس جھوپڑے میں اس گھر میں, اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ نبی آ کر مجھ سے ملے گا اور مجھے شفا دے گا. اور جب وہ نبی باہر آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسے کہتا ہے کہ کیا کر, جا یردن میں جا کر سات گوتے مار لے. یہ بندہ جس نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں, جس نے بہت سے کام کیے ہوئے ہیں, جو اپنی شازوری پر یقین کرتا ہے, اپنی تلوار پر بھروسہ رکھتا ہے, اپنے بادشاہ کے نام پر اختیار پر کیا کرتا ہے جی, بہت کچھ وہ کر چکا ہے. اب وہ سامنے کھڑا ہے ایک نبی کے, اور نبی اسے کیا کہتا ہے جی؟ اس نمان کی نظر میں جو نبی نے اسے کہا وہ بہت معمولی ہے, لیکن جو کچھ نبی اسے کہنے کو کہتا ہے کہ کر, نمان کی نظر میں وہ کیا ہے جی؟ حیثیت نہیں رکھتا, لیکن نبی کی نظر میں وہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اسے کیا کرنا ہوگا جی؟ ایمان سے. سو ایمان سے کرنا ہوگا. اور وہاں پر اس پر کیا ہوتا ہے جی؟ شک کے بادل چھاتے ہیں. وہ اپنے گھمنڈ میں بولتا ہے کہ یہ کیسے نے بات مجھے کہہ دی, میرے تو اپنے ملک میں اس سے بہترین کیا ہے جی؟ دریا ہے جو بہتے ہیں, جس کا پانی صاف ہے, اور یہ مجھے کہتا ہے کہ یردن کے اس گندے پانی کے دریا میں, جسے دریائے یردن کہتے ہیں, جس کا پانی گدلا ہے, اس میں جا کر کہتا ہے سات گوتے مار. جب وہ اس بات کو سنتا ہے تو وہ خود اپنے ایمان کو کیا کرتا ہے جی؟ کمزور کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے وہاں پر ایک ملازم موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ مالک, اس نے تجھے کوئی بڑا کام کرنے کو نہیں کہا. مثال کے طور پر کہ پہاڑ کی چوٹی پر سے وہ درخت اکھاڑ کر لا, یا سمندر کی تہہ میں سے وہ قیمتی پتھر نکال کر لا, یا کسی ملک کے ساتھ جنگ لڑ کے واپس آ تو تجھے شفا ہو جائے گی, یا کوئی اور انوکھا کام کر. اس کو ہم مثالوں میں دے سکتے ہیں. لیکن اس نے کیا کہا؟ جا کر سات گوتے مار دے. یہاں پر ایمان کیا ہے جی؟ ایمان کا امتحان ہے. اور وہ اس ایمان کے امتحان میں ناکام ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے جی؟ کامیاب ہوتا ہے, جب اسے کہا جاتا ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے. سو ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ بہت دفعہ جو ہماری نظر میں بڑا کام نہیں ہوتا, خدا کی نظر میں وہ ہمارے لیے شروعات ہے. نمان کو سات گوتوں کا کہا گیا کیونکہ اسے ضرورت تھی. پترس کو خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا کہا تھا؟ اس رات جب طوفان آیا ہوا تھا, جب کشتی پانی سے کیا تھی جی؟ مقابلہ کر رہی تھی. طوفانی رات تھی, بجلیاں گھڑک رہی تھی, تمام کے تمام شگرد سہمے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح پانی پر چلتا ہوا کیا آتا ہے, اپنے شگردوں کی طرف آتا ہے, اور ان میں سب دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ لگتا کہ کوئی بھوت ہے. اور یسوع مسیح وہاں پر کیا کہتا ہے؟ خوف نہ کرو, ڈرو مت, میں ہوں. ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जैसे ही शिगिर्दों ने यीशु की आवाज को सुना और पत्रस के अंदर क्या है जी, ये दिलचस्पी की बात हम देखते हैं कि जैसे ही वो सुनता है उस पर अमल करना चाहता है और यीशु मसीह से कहता है पत्रस आ जाओ। यहां पर पत्रस के ईमान का इम्तिहान है और पत्रस को फैसला करना होगा कि वो अपने ईमान पर ईमान रखे या अपने कहने वाले के ईमान के ऊपर जो उस पर किया गया है ईमान रखे। मसीही जिंदगी के सफर में बहुत दफा हम ईमान इसलिए पुख्ता पाते हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह के कहे पर क्या किया है जी, यकीन किया है। क्योंकि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का क्या है जी, सबूत है, जो नजर नहीं आती, जो मौजूद में नहीं, जिनको किसी ने ना देखा ना समझा और ना ही यकीन किया, खुदावंद खुदा वो क्या करता है, ईमान वालों के लिए मुमकिन कर देता है। शिगिर्दों ने कहा, रसूलों ने कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा और हम देखते हैं कि पत्रस का ईमान किस तरह बड़ा, पानी पर चल कर आ, पानी पर वो ईमान रखकर यीशु के कहे पर चल रहा है। चलते चलते जब इर्द गिर्द नजर की, तूफान की, उन तमाम बातों को सुना, देखा और महसूस किया जो उसके चेहरे पर पानी की छले आ रही थी, उसे वो तमाम खौफ ने क्या कर दिया, उसके ईमान में फिर क्या किया, शक का कीड़ा लगाया और पत्रस डूबना शुरू हो गया। सो ईमान के सफर में यीशु मसीह हमसे कहेगा नामुमकिन काम को करने के लिए जो उसकी नजर में क्या है, मुमकिन है, हमारी नजर में नामुमकिन। और यहां पर जो बात कही गई है सब कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में राही के दाने के बराबर ईमान होता तो तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। ये बयान जब यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के सामने दिया तो यीशु मसीह उनकी दिलों की जो है जी जांच पड़ताल कर रहा है। वो उनको जानता है कि वो ईमान में कहां पर है, इसलिए वो उनको समझाना चाहता है कि तुम ईमान में देखो कहां पर हो। हमें भी खुदा जब नामुमकिन हालात हमारे सामने होते हैं वो चाहता है कि हम अपने ईमान को परखें कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। ये इम्तहान, ये बात जो शिगिर्दों रसूलों को कही गई ये क्या थी, उनके ईमान की जांच पड़ताल थी। अलीशा ने उसे सात गोतों का कहा नमान कोड़ी को, ये उसके ईमान की जांच पड़ताल थी। पत्रस से यीशु ने कहा कि मेरे पीछे पानी पर, मेरे पास पानी पर चलकर आ जा, ये उसके ईमान की क्या थी जी, जांच पड़ताल थी कि जितनी देर तक उसने ईमान रखा वो नामुमकिन काम करता रहा कि सवाए यीशु मसीह के इस दुनिया में कोई और कभी पानी पर नहीं चला, और अगर कोई चला था तो वो पत्रस था, और जब तक वो यीशु पर ईमान रख के उस पर निगाह करके उस अनदेखे खुदा को वजूद में देखकर क्या करता है, ईमान से चलता रहता है, वो डूबता नहीं। और जैसे ही वो डूबना शुरू होता है यीशु से क्या कहता है, तेरा ईमान कहां गया, तेरा ईमान कहां गया, तूने अभी अभी ये जो काम देखा है तेरे ईमान को क्या हुआ। हमारा ईमान इस मसीही जिंदगी सफर में क्या होगा जी, कम होगा, शकी होगा, समझ नहीं आएगी हम क्यों करें, क्या ऐसा हो सकता है, और बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बढ़ेगा और मजबूत होगा, पुख्ता होता जाएगा। ये क्या है, हमारी जिंदगी का क्या है जी, मसीही सफर है। हमारी बहुत दफा कैफियत होगी हमने अभी अभी मौजजा देखा है कि खुदा ने हमारे लिए आज ये किया है, और आधे घंटे बाद हम भूल जाएंगे कि क्या वाकई ये खुदा ने किया था। بنی اسرائیل قوم نے 40 سال تک ایسے معجزات دیکھے جو کہہ سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھے. اور ان کا ایمان کیا تھا جی, ایک منٹ میں یہوہ کی جے ہو, دوسرے منٹ میں تو ہمیں مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا. سو یہاں پر ایمان کی جانچ اور پڑتال یسوع مسیح نے کرنے کے لیے ان کا جواب دیا ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ جی پادری صاحب میرا ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے, کیسے بڑھ سکتا ہے, کیسے میں اپنے ایمان کو پختہ کروں, تو میں آپ کو کہوں گا جاؤ پانی کے اوپر چلو. اور اسی بات میں یا کوئی ایسا ناممکن کام جو ناممکن نہیں ہے انسانی سوچ میں کہہ دیا جائے کہ کرو, تب ہمارے ایمان کی کیا ہوگی جی, بڑھوتی اور مضبوطی ہوگی کہ ہم اس پر یقین کریں. سو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع سے اگر ہم یہ سوال کریں, شاگردوں کو اس نے کہا کہ توت کے اس درخت سے کہو کہ جا کر پانی میں لگ جائے, آج ہماری زندگی میں کون سی ایسی بات ہے جو جڑ پکڑ ہے جسے اکھاڑنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کہے کہ اسے کہو کہ میری زندگی سے نکل جا, میرے راستے سے ہٹ جا. یہ آپ کے اور آپ ہی کے درمیان اور خدا کے درمیان ہے کہ آپ کا ایمان کیسے بڑھے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے گھر میں مسئلہ ہو نوکری کا جو آپ کے لیے آپ کا شتوت کا درخت ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے جو آپ کے لیے آپ کا شتوت ہے, ہو سکتا ہے روحانی جنگ میں آپ کے سامنے کوئی آپ کا جاتی جولیٹ ہے جسے ایمان سے ایک پتھر سے کیا کرنا ہوگا, مارنا ہوگا, اور وہ آپ ہی کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. کیونکہ جب یسوع کہتا ہے پانی پر چل کر آ, تو چل کر آنا ہوگا. اور یہ تجربہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. اس لیے راہی کے دانے کی برابر اگر ہمارا ایمان ہوتا, یسوع مسیح کہتا ہے اسے, تو درخت سے کہتے تو وہ جڑ سے اکڑ کر سمندر میں لگ جاتا. آج آپ کی زندگی میں کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یسوع سے دور کرے, کس کا سامنا ہے, کتنا ایمان ہے, کتنا بڑھانا چاہتے ہیں, کیا شک کی حالت میں ہیں یا مردگی کی حالت میں ہیں یا پختگی کی حالت میں ہیں, یہ آپ اور آپ کے اور خدا کے درمیان ہے. ہمارا ایمان کس طرح بڑھے گا, جب ہم اسے کہیں گے کہ میرے ایمان کو بڑھا, تو وہ کہے گا بیٹا اس کام کو کر, بیٹی اس کام کو کر, اس بات پر یقین کر, یہ کر, تیرے لیے ویسا ہی ہو جائے گا. کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا اعتماد اور وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ان سب کا کیا ہے جی, ثبوت ہے. سو آئیں ہم خدا کے زور جھکیں. اگر خدا و خدا کے کلام میں سے آج ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے اور جو سمجھ آئی ہے اس پر ہم کیا کریں جی, یقین کریں, تاکہ ہمارے ایمان میں ایمان کا جب امتحان ہو تو ہم خدا و خدا پر بھروسہ کریں کہ اس نے علیشا کے وسیلہ سے نمان کوڑی کو, اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے پترس کو, اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کو, اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے بیوہ کے مردہ بیٹے کو, اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے اندھوں کی آنکھوں کو, اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے جو لوگوں کے درمیان رہا اور چلتا پھرتا رہا, یعنی یسوع مسیح کے منہ کی باتوں سے, نہ کہ تب بلکہ آج بھی کیا کرتا ہے جی, بہت سے ناممکن کاموں کو کرتا ہے. خدا و خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کے ایمان کو بڑھا. اگر کسی جگہ پر کسی زندگی میں کسی حالات کا ہمیں سامنا ہے اور ہمارے ایمان کو شک کا کیڑا کھانے کی کوشش کر رہا ہے, या हमारे ईमान को कम करने के लिए खुदा खुदा दुनिया के सोच ख्याल और बातें और नामुमकिन हालात हमें खुदा खुदा शिकस्त देना चाहते हैं, तमाम बातों में तो हमें गलबा दे, फतेहमंदी की जिंदगी बसर करने की खुदा खुदा हिकमत और दनाई दे। आज के कलाम के वसीला से सब कुछ बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ।